साथियों नमस्कार, आप सुन रहे मोबाइल वाणी और मोबाइल वाणी के मंच पर आज विश्व सामाजिक न्याय दिवस के अवसर पर छिंदवाड़ा जिले की पहली अधिवक्ता समाज सेवी एवं किसान नेत्री सुश्री आराधना भार्गव जी से आज हम आपको रूबरू कराने जा रहे हैं। नमस्कार दीदी।
नमस्कार
दीदी। जैसा कि आज 20 फरवरी अर्थात विश्व सामाजिक न्याय दिवस है, हम आपसे जानना चाहते हैं कि आज ही के दिन विश्व सामाजिक न्याय दिवस क्यों मनाया जाता है?
विश्व सामाजिक न्याय दिवस इसलिए मनाया जाता है कि अंतिम छोर पर खड़े हुए व्यक्ति को न्याय मिल सके, ये इसके पीछे की जो थीम है। अब वो थीम हमको दिखाई दे रही है और इसी उद्देश्य से लेकर इसको इस दिवस को मनाया जाता है पूरी दुनिया में। पर हम पूरी दुनिया में अभी वर्तमान में जो काम देख रहे हैं वो बिल्कुल इसके उलट दिखाई दे रहा है। जैसे जैसे हम तालिबान की बात करें तो तालिबान ने अभी एक फैसला लिया कि महिलाएं गर्भ निरोधक गोलियों का उपयोग नहीं कर सकती और वहां पर जांच करना उन्होंने शुरू कर दिया कि मेडिकल स्टोर की भी जांच कर रहे हैं और अगर कोई इस तरह की गोलियां बेचता है तो उसके खिलाफ काम कर रहे हैं। तो न्याय के विपरीत दुनिया में हमें काम होते हुए दिखाई दे रहा है। हम ये भी देख रहे हैं कि नाबालिग बच्चियों की शादी करना गैर कानूनी काम है, अपराध है। हम इस लाइन पर भी अगर देखें तो हम अपने भारत को अगर देखते हैं तो हम भारत में भी यह पाते हैं कि कानून के खिलाफ काम हो रहा है और नाबालिग बच्चियों की शादी कानून बनने के बाद भी हम देख रहे हैं कि बच्चियों के साथ नाबालिग बच्चियों की शादी हो रही है और पुराने मामलों को निकाला जा रहा है और पुराने मामलों के लोगों को सजा दी जा रही है। तो ये जो दिवस पर आपने जो कार्यक्रम रखा वो आप बधाई के पात्र इसलिए हैं क्योंकि आम व्यक्ति अपनी जवाबदेही को ले मात्र हम ये दिवस मनाकर सोचेंगे कि समाज में या दुनिया में लोगों को न्याय मिल गया या समाज में या दुनिया को ये दिवस मनाने से न्याय मिल जाएगा या कानून बना देने मात्र से न्याय मिल जाएगा, तो ये समाज की गलतफहमी है, ये दुनिया में रह रहे लोगों की गलतफहमी है। लोगों को ये समझना होगा कि कोई कानून भी बना है और इस कानून का पालन हो ये समाज की जवाबदेही। तो हम देख रहे हैं कि हमने देखा रायपुर में एक लड़की को जो 16 साल की है जिसके यहाँ काम करती थी तो व्यक्ति मार रहा है और उस लड़की की हालत गंभीर है। समाज क्या कर रहा है, वीडियो बना रहा है, ना तो उस बच्ची को बचा रहा है ना उसे थाने में पहुंचाने का काम कर रहा है। तो ये दिवस मनाना अपने आप में अपने आप के देश के और दुनिया के लोगों के साथ धोखा होगा। ये इसलिए मैंने आपको बधाई दी कि आपने जो मोबाइल वाणी के माध्यम से लोगों तक इस बात को पहुंचाएंगे कि इस दिवस को मनाने की सार्थकता तब होगी जब हम खुद सामने होकर आए। उदाहरण के तौर पर सुप्रीम कोर्ट को कैसे गुमराह करती है सरकार, अभी हम न्यायाधीशों के बारे में देख रहे हैं कि न्यायाधीशों की नियुक्ति के बारे में सरकार चाहती है कि उसका हस्तक्षेप हो। तो न्यायपालिका, विधायिका और कार्यपालिका जब ये स्वतंत्र हैं तो स्वतंत्र होकर ये काम क्यों नहीं करती और न्यायपालिका को स्वतंत्रता पूर्वक काम क्यों नहीं करने दिया जाता। ये हमारे देश का ही नहीं, ये दुनिया का है क्योंकि आज दुनिया इस दिवस को मना रही है। तो दुनिया में हमने ये देखा कि सरकारें अपने बल पर तो काम नहीं कर पा रही हैं, तो न्यायपालिका का सहारा लेना चाहती है, न्यायपालिका को अधीनस्थ बनाना चाहती है, न्यायपालिका से अपने मन मुताबिक फैसला कराना चाहती है। तो इसमें जनता को न्याय मिलने की संभावनाएं बहुत कम है। छिंदवाड़ा में अभी हमने किसानों के मुद्दों को लेकर पेंच व्यवर्तन परियोजना के मुद्दों को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की। मध्य प्रदेश सरकार ने जो जवाब दिया है सुप्रीम कोर्ट के सामने वो मतलब हंसने योग्य है। किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट की आंखों के सामने मध्य प्रदेश सरकार धूल झोंक रही है। आदर्श पुनर्वास केंद्र 21 बनाए हैं और आदर्श गांव जो बनाए हैं उसमें उन्होंने कहा लाइब्रेरी है, वहाँ पर बुजुर्गों को बैठने के लिए कुर्सियां हैं, वहाँ पर निस्तारी तालाब है, वहाँ पर पार्क है, और कुछ भी कहीं पर नहीं है, मतलब झूठ की पराकाष्ठा। तो ऐसा दिवस कब सफल होगा? जब हम भारत के लोग इस बात को जागे, दुनिया के लोग इस बात को समझें कि न्याय दिवस मनाने के पीछे जो मंशा है, वह मंशा तब सफल होगी जब देश और दुनिया के लोग अंतिम छोर पर खड़े हुए व्यक्ति को न्याय दिलाने के लिए सामने आएंगे। सिर्फ न्यायपालिका पर छोड़ देने से लोगों को न्याय नहीं मिल पाएगा। ये बात हम लोगों को समझना चाहिए, देश के नागरिकों को समझना चाहिए। हम भारत के लोग भारत को प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक बनाने के लिए हम लोग जरा संकल्पित हैं। हमने अपने भारत के संविधान को खुद ने अंगीकृत किया है, हमने खुद को अपने को आपको सौंपा है। इसका मतलब ये है कि धार्मिक ग्रंथ किसी और ने बनाए हैं, पर भारत के संविधान को हमने बनाया है और हमने अपने को सौंपा है। ऐसी स्थिति में न्यायपालिका स्वतंत्र रहे, अंतिम छोर पर खड़े हुए व्यक्ति को न्याय मिले, तभी इस दिवस को मनाने की सार्थकता होगी।
दीदी, जैसा कि आज हम देख रहे हैं कि पूरे भारत में विश्व सामाजिक न्याय दिवस के रूप में इस दिवस को मनाया जाता है, तो हम आपसे जानना चाहते हैं, क्या आज भारत में महिला और पुरुषों में समानता का अधिकार जो सरकार देने की बात कर रही है, तो क्या वह आज मिल पा रहा है
भारत में? तो क्या दुनिया में नहीं मिल पा रहा है? भारत की स्थिति को तो हम देख रहे हैं, समान काम के लिए समान वेतन, पर समान काम के लिए समान वेतन नहीं मिलता। अभी हम क्रिकेट को देखें कि क्रिकेट के खेल में महिलाओं ने बहुत बढ़िया प्रदर्शन किया और बताया कि हम पुरुषों की तुलना में खेल खेलने में कहीं से कम नहीं है, पर जो पुरुषों को मिलता है वेतन वो महिला खिलाड़ियों को नहीं मिलता। मैं बड़े बड़े तबके की बात इसलिए कर रही हूँ कि वहां पर हम इस तरीका का भेदभाव देख रहे हैं। जो जो पढ़ा लिखा सबका देख रहा है इसको, वो खेत में काम करने वाला नहीं देख रहा, क्योंकि उसे तो खेत में काम करने से फुर्सत नहीं। वहीं पर अगर अब हम खेत की बात करें, जहाँ कम पढ़ी लिखी महिलाएं काम कर रही हैं, खेत घर में घास काट के ला रही हैं, जानवर को वो पाल रही हैं, बाल बच्चों के लिए रोटी बना रही हैं, सास ससुर की सेवा कर रही हैं, जानवर को चारा खिला रही हैं, दूध लगा रही हैं, घर का खाना बना रही हैं, उसके बाद खेत में काम करने जा रही हैं। पर खेत में जब वो मजदूरी करने जाती हैं, तो पुरुष मजदूर के बराबर महिला मजदूर को पैसा नहीं मिलता। और ये बताइए, ये कैसा सामाजिक न्याय है कि कैलोरी बर्न करने में पुरुष से चार गुना ज्यादा कैलोरी बर्न कर रही और उसके बाद उसे समान काम के लिए समान वेतन नहीं दिया जा रहा है, और पूरा का पूरा गांव देख रहा है इसको, पंच देख रहा, सरपंच देख रहा, जिला पंचायत, जनपद पंचायत देख रहा, विधायक, सांसद, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, किसी की निगाह से यह बात ओझल नहीं है, पर बोलने को कोई भी तैयार नहीं है। तो जहाँ स्त्री पुरुष बराबरी की बात हम करते हैं, वहां पर ये स्पष्ट तौर पर देख रहे हैं कि ये भेदभाव हमें दिखाई दे रहा है। हम राजनीति की बात करें, दुनिया की बात करें,
दीदी हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे, जैसा हम राजनीतिक क्षेत्र में देखने में आ रहा है कि त्रिस्तरीय पंचायती राज चुनावों में महिलाओं को 50% की भागीदारी सुनिश्चित की गई है, क्या यह भागीदारी लोकसभा विधानसभा में भी है, और नहीं है तो क्यों?
लोकसभा विधानसभा में यह भागीदारी बिल्कुल नहीं है, क्योंकि पितृत्वात्मक समाज में पुरुष अपनी सत्ता महिलाओं को देने के लिए तैयार नहीं है। इसलिए हर पार्टी हम देखते हैं कि जब महिला विधेयक की बात आती है पारित करने की, तो उस पर बहुत सारा हंगामा करके सब उसको उस बिल को फेल होने देते हैं, पर जहाँ विधायक और सांसद के वेतन बढ़ने होते हैं, चुपचाप वह बिल पारित कर हो जाता है, वह देश और दुनिया को पता ही नहीं चल पाता। ये पंचायती राज में भी हम देख रहे हैं कि आरक्षण में क्या जो महिला काम समझती है, जो अन्याय अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाती है, वैसी महिला को पंच सरपंच नहीं बनाएंगे, वो जो पति था उसकी पत्नी को बना देंगे, और कितने परसेंट महिलाएं हैं जो स्वयं काम कर रही हैं, काम उनके पति कर रहे हैं, पर उनके खिलाफ भी सरकार कोई एक्शन लेने को तैयार नहीं है, क्योंकि सरकार की ही मंशा है कि महिला नेतृत्व ना उभर पाए। यह भारत की नहीं, यह दुनिया की स्थिति है। अभी हमने दो देशों को देखा कि मंत्री को इस्तीफा देना पड़ा कि इतना ज्यादा उन्हें प्रताड़ित किया गया कि उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया। मैं उनको कहूंगी कि इस्तीफा मत दीजिए और जम के लड़ के मुकाबला करिए, और इस राजनीति में महिलाओं को सामने आना चाहिए। अभी हमने अमेरिका में देखा, भारतीय मूल वंश की जो निक्की है, उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति का चुनाव मैं लड़ूंगी। उस तरीके से जब महिलाएं सामने आएंगी तो मुझे लगता है आरक्षण की जरूरत नहीं पड़ेगी, कमर कस के हम सामने आएंगे और ऐसी दुनिया बनाएंगे जिसको हम ये कह सकेंगे कि ये महिलाओं की दुनिया है, जिसमें ममता होगी, जिसमें प्यार होगा, जिसमें गैर बराबरी समाप्त होगी और सम्मान पूर्वक जीवन जिएंगे। महिला की दुनिया से आशा है, जो बच्चा सबसे कमजोर होता है माँ उसे पहले गले लगाती है। ऐसी ही दुनिया बने ताकि हम अत्याचार और अन्याय के खिलाफ जो गैर बराबरी है उसको मिटा सके।
दीदी, जैसा कि हम बात कर रहे विश्व सामाजिक न्याय दिवस की, और क्योंकि आपने राजनीतिक क्षेत्र में महिलाओं की स्थिति पर प्रकाश डाला, तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि मध्य प्रदेश में वर्ष 2024 में विधानसभा चुनाव संपन्न होना है, तो क्या आप चाहेंगे कि इसमें सभी राजनीतिक दल महिलाओं को 50% भागीदारी सुनिश्चित करें और विधायकों के लिए टिकट आवंटित करें?
ये तो मैं कहूंगी कि सबको 50% करना चाहिए, पर पार्टी उन महिलाओं पर दाव लगाती है जो जीतने की क्षमता रखती हैं। तो महिला नेतृत्व को मैं ये बात जरूर कहूंगी कि उन्हें सामने आना चाहिए, और जिंदगी का मतलब होता है निर्णय लेना। तो जिस दिन महिला घर के कामों में निर्णय लेगी, देश के कामों में निर्णय लेगी, दुनिया के कामों में निर्णय लेगी, तभी उसकी जिंदगी सार्थक होगी। तो मात्र 50% आरक्षण से बहुत अच्छे रिजल्ट निकलेंगे, ऐसी मैं सोचती हूँ कि ऐसा संभव नहीं हो पाएगा जब तक महिला नेतृत्व जो खुद नेतृत्व करती है ऐसी महिलाओं को सामने लाया जाए। वो पुरुष के जहाँ पति को किसी कारण से टिकट नहीं मिल रहा इसलिए पत्नी को टिकट दे दिया, तो वो महिला नेतृत्व आगे नहीं बढ़ पाएगा। और जो महिलाएं समाज में हर जगह काम कर रही है, हर जिले में काम कर रही है, ऐसी महिलाओं को अगर टिकट देने का काम पार्टियां करेंगी तो निश्चित तौर पर परिवर्तन होगा और वह महिलाएं जीत कर भी आएंगी।
दीदी, मैं आपसे भी जानना चाहूंगा कि आज के दिवस पर आप उन राजनीतिक दलों को क्या संदेश देना चाहोगी जो आने वाले विधानसभा में इस तरह का कदम उठाए?
राजनीतिक दलों को मैं ये संदेश देना चाहूंगी कि अगर वो महिलाओं को टिकट ना दें तो मतदाता को ऐसी पार्टियों का विरोध करना चाहिए। इसलिए विरोध करना चाहिए कि आप देखिए, शराब बेचने का काम सरकार की प्राथमिकता है, हिंदू धर्म की बात ये कर रहे हैं, पर शराब ये बेचेंगे तो ये कहाँ धार्मिक पार्टियां रह गई? राम के राज में तो कभी शराब नहीं बिकी, और आप कहते हो कि आप राम का राज लाने वाले हो। तो महिला नेतृत्व तो जब सामने आएगा तो इस तरह के गलत कानून जो बने हैं उनका विरोध करेगा। सरकार की ये जिम्मेदारी है नशीली वस्तुओं को रोके, ये नीति निर्देशक हुक्म है। इसका मतलब ये हुआ कि सरकार को ऐसे कानून बनाने चाहिए कि जो नशीली वस्तु को बेचेगा वो जेल के अंदर जाएगा। तो यहाँ तो सरकार खुद शराब बेचने का काम कर रही है, तो जब महिला नेतृत्व सामने आएगा तो महिला हिंसा भी कम होगी, महिलाओं के साथ भेदभाव भी कम होंगे, महिलाओं के पक्ष के कानून बनेंगे। जब अंतिम छोर पर खड़ी महिला अगर लोकसभा और विधानसभा में पहुंचेगी तभी ये संभव होगा, वरना इतनी महिलाओं के साथ हम देख रहे हैं यौन शोषण हो रहा है, महिलाओं के साथ अत्याचार अन्याय हो रहा है, पर हमारी चुनी हुई महिला प्रतिनिधि इस पर अपनी आवाज नहीं उठाती, क्योंकि वो महिलाओं की तरफ से ये जनता का प्रतिनिधित्व करने वाली नहीं है, वो सरकार का प्रतिनिधित्व करने वाली है, तो जनता का प्रतिनिधित्व करने वाली महिला लोकसभा और विधानसभा में पहुंचे, ये चेतावनी हम सरकार को इस आपके मोबाइल वाणी के माध्यम से देना चाहते हैं कि जो महिलाएं समाज के लिए संघर्ष कर रही हैं, ऐसी महिलाओं को सरकार टिकट देने का काम करे।
दीदी, जैसा कि आज हम विश्व सामाजिक न्याय दिवस पर बात कर रहे हैं, तो हम आपसे जानना चाहते हैं कि आज वर्तमान परिस्थिति में देश में बड़े बड़े पदों पर आसीन महिलाएं हैं, यहाँ तक कि भारत की राष्ट्रपति भी महिला है, हमारे जिले की कलेक्टर महोदया महिला है, इसके बावजूद आज जो बातें आपके माध्यम से निकल कर आ रही है कि भाई आज समाज में बराबरी का दर्जा नहीं मिल पा रहा है, तो इस संबंध में आप जनता को क्या संदेश देना चाहेगी कि वे आज के दिवस पर किस तरह का संकल्प लें और किस तरह अपने हक और अधिकार के लिए लड़ें?
पहले तो मैं अपने जिले की कलेक्टर महोदया की बात करूंगी। मुझे उन पर बहुत प्राउड है। प्राउड इसलिए है कि जिस चालाकी, जिस होशियारी के साथ वो जिले का संचालन कर रही है, वो किसी के हाथ की कठपुतली नहीं बनी। कोई ये नहीं कर सकता कि हम अपनी कलेक्टर से ये काम करवा लेंगे। वो अपनी मर्जी से काम करती है। मैं उन्हें बधाई देती हूँ ऐसे नेतृत्व के लिए कि वे अपनी बुद्धि से और नारी मन से इस जिले के फैसले को लेना काम करती हैं, लेने का काम करती हैं। इस नेतृत्व को सलाम, उनके लिए मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं। वो ऐसा काम करके दिखाएं कि इतिहास याद रखे कि छिंदवाड़ा में एक महिला कलेक्टर थी जिसने इस तरीके के जनता के हक में काम करने का काम किया। राष्ट्रपति महोदया जो हैं, ये पितृत्वात्मक समाज से संचालित हैं। राष्ट्रपति का पद बहुत बड़ा पद होता है, संविधान की सुरक्षा का पद होता है, आदिवासियों के संरक्षण का पद होता है। तो वो तो कहती है कि मैं तो हिंदू हूँ, तो भाई आदिवासी हिंदू नहीं है। आदिवासी का धर्म प्राकृतिक धर्म है, और वो प्राकृतिक धर्म की रक्षा कैसे की जाए, जल जंगल जमीन को कैसे बचाया जाए, तो वो अपने पद की गरिमा के अनुकूल अगर काम करेंगी, क्योंकि एक अवसर मिल चुका है, और जब भारत के संविधान की रक्षा को लेकर आप वो काम करेंगी, तो मुझे लगता है उनकी पहचान ज्यादा अच्छी बन सकेगी। बनिस्बत पार्टी की चम्मचगिरी करने से बेटर है कि संविधान के सुरक्षा के लिए अगर वो काम करेंगी, तो निश्चित तौर पर उनका देश और दुनिया में नाम होगा। हम उनको शुभकामनाएं देते हैं कि वे संविधान के अनुकूल ही अपना काम करें।
यह थी छिंदवाड़ा जिले की पहली महिला अधिवक्ता, किसान नेत्री, समाज सेविका सुश्री आराधना भार्गव जी, जिन्होंने आज विश्व सामाजिक न्याय दिवस पर अपनी बात ही नहीं रखी तो उन्होंने हो रहे भेदभाव के प्रति अपनी चिंता भी जाहिर की, साथ ही शासन प्रशासन से निवेदन भी किया कि वे महिलाओं को हक और अधिकार में बराबर का दर्जा दे। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी आपका कि आपने मोबाइल वाणी के माध्यम से रूबरू होकर महत्वपूर्ण बातें रखी। आज विश्व सामाजिक न्याय दिवस पर समस्त देशवासियों को मोबाइल वाणी परिवार की ओर से बहुत बहुत बधाई एवं हार्दिक शुभकामनाएं।